ठीक है, तो आज की इस गहरी चर्चा में हम कुछ बहुत ही दिलचस्प खंगालने वाले हैं। मतलब आज का हमारा जो विषय है ना, वो डॉक्टर जॉन ऑसवाल्ड के एक बहुत ही शानदार लेक्चर पर आधारित है।
हाँ, वो जो यशाया ग्रंथ के अध्याय 44 से 46 पर है ना?
बिल्कुल वही वाला। और देखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटना नहीं है, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस प्राचीन काल में सच्चे ईश्वर और उन इंसानों की बनाई मूर्तियों के बीच जो तुलना की गई थी, वो आज के समय में कितनी सटीक बैठती है।
सही बात है। अगर हम इसे एक व्यापक नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी नहीं है, ये सीधे तौर पर आज की हमारी जिंदगी, हमारी पहचान और उस चीज से जुड़ी है जिसे हम नियंत्रण का भ्रम कहते हैं।
नियंत्रण का भ्रम, क्या बात है! ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मतलब जरा सोचिए, जब प्राचीन समय में लोग अपना घर बार हार रहे थे, उन्हें निर्वासित किया जा रहा था, तो उन्हें कैसा महसूस होता होगा?
मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती। मतलब जब आपकी पूरी दुनिया उजड़ रही हो तो पहचान खोने का डर तो हावी होगा ही ना।
एकदम। और इसी बात को समझाने के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत ही रोजमर्रा की जिंदगी का उदाहरण आ रहा है। जैसे मान लीजिए हम बीमार हैं या कोई चोट लग गई है, हम क्या चाहते हैं? एक सटीक जवाब, है ना?
हाँ बिल्कुल, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और तुरंत समाधान चाहते हैं,
है ना? जैसे अगर हड्डी टूट गई है तो हम एक्सरे करवाते हैं, मशीन में वो सफेद लाइन साफ दिख जाती है और डॉक्टर उंगली रखकर कह देता है कि देखिए ये रही समस्या, यहाँ प्लास्टर बांधना है। सब कुछ कितना असली देने वाला होता है, क्योंकि वो हमारे नियंत्रण में लगता है।
क्योंकि हमें चीजें स्पष्ट रूप से देखने और उन्हें अलग अलग खांचों में बांटने की आदत है। इससे हमें एक झूठी सुरक्षा मिलती है कि चलो सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। ये जो लीनियर या रैखिक सोच है ना, ये इंसानी फितरत है।
बिल्कुल, लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब हम इंसान की गहरी पहचान या उसके वजूद के डर की बात करते हैं। वहां कोई एक्सरे मशीन काम नहीं करते।
एकदम सही का। आप किसी के अंदर का डर या उसका मानसिक बोझ किसी मशीन से नहीं नाप सकते।
और यहीं पर ऑसवाल्ड का ये विश्लेषण हमें उस प्राचीन समय में ले जाता है जब इंसान को लगता है कि उसकी पूरी दुनिया मिटने वाली है। तो वो सबसे पहले क्या करता है? वो कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करता है जिसे वो खुद कंट्रोल कर सके।
हाँ, और यहीं से यशाया 44 का वो हिस्सा शुरू होता है। और सच कहूं तो पाठ में मूर्तियों के खिलाफ जो व्यंग किया गया है वो बहुत ही तीखा और काफी हास्यपूर्ण भी है।
हास्यपूर्ण तो है, मतलब जरा उस आदमी के बारे में सोचिए जो जंगल जाता है, वो लकड़ी का एक टुकड़ा काटता है, आधा हिस्सा वो आग में जला देता है, अपना खाना पकाता है, खुद को गर्म करता है।
हाँ, और यहाँ तक तो सब बहुत लॉजिकल लगता है कि वो प्रकृति का उपयोग कर रहा है।
बिल्कुल, लेकिन फिर वो क्या करता है? उसी लकड़ी के बचे हुए आधे टुकड़े से एक मूर्ति बनाता है, उसके सामने घुटनों के बल बैठता है और कहता है, तू मेरा भगवान है, मुझे बचा ले। मतलब ये कितनी बेतुकी बात है।
बहुत बेतुकी। और ऑसवाल्ड समझाते हैं कि इसे महज बेतुका नहीं बल्कि पाठ में इसे एक घृणित कार्य कहा गया है। अब घृणित इसलिए नहीं कि वो लकड़ी की पूजा कर रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये पूरी प्राकृतिक व्यवस्था को उलट देता है।
व्यवस्था को उलट देता है मतलब?
मतलब ये कि सृष्टि के नियम के हिसाब से इंसान को प्रकृति का उपयोग करना चाहिए और बनाने वाले की पूजा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ इंसान क्या कर रहा है, वो उस चीज की पूजा कर रहा है जिसे उसने खुद गढ़ा है। वो खुद निर्माता होकर अपनी ही बनाई चीज का गुलाम बन गया है।
बाप रे, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे जैसे कोई इंसान कार की पिछली सीट पर बैठ जाए, हाथ में एक नकली प्लास्टिक का स्टीयरिंग व्हील पकड़ ले और जोर जोर से घुमाते हुए सोचे कि कार वही चला रहा है।
बिल्कुल, यह नियंत्रण का एक बहुत ही मजेदार लेकिन खौफनाक भ्रम है।
और मुझे यहाँ सेंट ऑगस्टीन का वो मशहूर कोट याद आ रहा है, उन्होंने कहा था कि मूर्ति पूजा असल में उस चीज का उपयोग करना है जिसकी पूजा की जानी चाहिए और उस चीज की पूजा करना है जिसका उपयोग किया जाना चाहिए।
वाओ, ये कोट तो इस पूरी समस्या की जड़ तक पहुंच जाता है। जब हम अपनी बनाई चीजों को पूजते हैं तो असल में हम खुद को ही ब्रह्मांड का केंद्र मान रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि वो मूर्तियां हमारे इशारों पर नाचे।
हाँ, क्योंकि उन्हें हमने बनाया है, एक तरह का सौदा है ये। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है।
कैसा सवाल?
अगर ये मूर्तियां और हमारे बनाए हुए ये सारे सिस्टम सिर्फ इसी प्राकृतिक दुनिया का हिस्सा हैं, तो फिर वो जो सच्चा निर्माता है जिसकी बात ग्रंथ कर रहा है, वो इस सिस्टम से अलग कैसे है?
इसे समझने के लिए हमें सिस्टम की सीमाओं को देखना होगा। ऑसवाल्ड बहुत अच्छे से बताते हैं कि ये देवी देवता भविष्य क्यों नहीं बता सकते।
क्यों नहीं बता सकते?
क्योंकि वो उसी बंद सिस्टम का हिस्सा है। एक सिस्टम केवल वही जान सकता है जो उसके अंदर हमेशा से होता आया है, जैसे एक घड़ी के अंदर के गियर्स।
अच्छा, घड़ी के गियर्स।
हाँ, गियर्स को सिर्फ गोल घूमना आता है, उन्हें नहीं पता कि घड़ी के बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। सिस्टम सिर्फ अतीत को दोहरा सकता है, कॉज एंड इफेक्ट के चक्र में फंसा हुआ। लेकिन निर्माता जिसने वो सिस्टम बनाया है, वो तार्किक रूप से सिस्टम के बाहर होना चाहिए।
ओहो।
जो सिस्टम के बाहर है वही कुछ नया कर सकता है।
ये बात तो भविष्यवाणी वाले पूरे कॉन्सेप्ट को ही पलट देती है।
हाँ?
क्योंकि देखिए ना, हम लोग भविष्यवाणी को एक टाइम टेबल की तरह देखते हैं। मुझे ऑज़वाल्ड के लेक्चर से वो 1812 वाला किस्सा याद आ रहा है, फ्रांसिस असबरी और वेस्ले वाला।
हाँ, वो दुनिया खत्म होने वाली भविष्यवाणी।
एकदम, किसी ने कह दिया कि दुनिया 1812 में खत्म हो जाएगी, लोग डर गए। फिर जब नहीं हुई तो किसी और ने नई तारीख दे दी कि नहीं नहीं 1839 में होगी। मतलब जब भी हमने इन ग्रंथों को कैलेंडर बनाने के लिए इस्तेमाल किया है, हम हमेशा बेवकूफी साबित हुए हैं।
सही कहा। और ऑज़वाल्ड यही साफ करते हैं कि निर्माता भविष्यवाणियां इसलिए नहीं करता कि हम बैठकर कोई टाइम टेबल बनाते रहे।
तो फिर असली मकसद क्या है?
असली मकसद ये बताना है कि भविष्य उसके हाथ में है, वो सिस्टम के बाहर है। इसलिए इंसान को आज, मतलब इस वर्तमान पल में डरने की कोई जरूरत नहीं है। भविष्यवाणियां हमें निडर होकर जीने की आजादी देने के लिए हैं, डराने के लिए नहीं।
ये तो बहुत ही गहरा विचार है, लेकिन यहां मामला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। क्योंकि जब हम सिस्टम के बाहर वाले निर्माता की बात करते हैं, तो आज की जो हमारी आधुनिक सोच है वो इससे बहुत टकराती है।
हाँ, आधुनिक दुनिया का नजरिया तो बिल्कुल अलग है।
बिल्कुल, आज का समाज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर बहुत जोर देता है, मतलब खुद का सबसे बेहतरीन वर्जन बनना। लेकिन ये सोच मानती है कि आप सिर्फ वही बन सकते हैं जो आपके अंदर पहले से मौजूद है। आप अपने जीन्स या अपने पर्यावरण से बाहर नहीं जा सकते।
मतलब आप एक पत्थर को पॉलिश तो कर सकते हैं, लेकिन उसे सोना नहीं बना सकते, है ना?
एकदम सही। आज की दुनिया मानती है कि इंसान का पूरी तरह से, मतलब जड़ से बदल जाना, वो मुमकिन ही नहीं है।
लेकिन पाठ इस आधुनिक विचार को सिरे से खारिज करता है। अगर सिर्फ प्राकृतिक नियम होते तो इंसान सच में नहीं बदल सकता था। लेकिन चूंकि निर्माता सिस्टम के बाहर है, वो उन नियमों को तोड़कर एक इंसान को पूरी तरह से नया रूप दे सकता है।
और इसके सबूत में लेक्चर में वो जो कहानी है उस हिंसक रूसी ड्रग डीलर की, बाप रे, वो कहानी तो रोंगटे खड़े कर देती है।
हाँ, वो अफगानिस्तान के युद्ध से लौटा हुआ इंसान।
हाँ, युद्ध के सदमे ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। वो शराब और ड्रग्स में डूब गया, बहुत हिंसक हो गया। अगर हम विज्ञान या मनोविज्ञान की माने तो कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से उसका भविष्य तय था।
बिल्कुल तय था, या तो वो मारा जाता या जिंदगी भर जेल में सड़ता। उसका उस दलदल से निकलना वैज्ञानिक रूप से लगभग असंभव था।
लेकिन फिर उसे उस खौफनाक रूसी जेल में एक बाइबल मिलती है, और स्रोत के अनुसार सिर्फ उसे पढ़ने से उसके अंदर कुछ ऐसा होता है, मतलब उसका पूरा जीवन, उसका पूरा अस्तित्व इस कदर बदल जाता है जिसे कोई प्राकृतिक नियम नहीं समझा सकता।
ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, ये उस तंत्र को समझाता है जो सिस्टम के बाहर काम करता है।
मतलब कॉज एंड इफेक्ट का टूटना।
हाँ, जब उसे एहसास हुआ कि कोई ऐसा निर्माता है जो उसके अतीत और उसके आघात से बहुत बड़ा है, तो वो उस अंतहीन चक्र से आजाद हो गया। हमारी बनाई मूर्तियां हमें सिर्फ हमारा अतीत दिखा सकती हैं, लेकिन वो बाहरी निर्माता एक नया भविष्य दे सकता है।
वाओ, तो अगर निर्माता किसी को भी किसी भी हद तक बदल सकता है, तो क्या वो दुनिया को बचाने के लिए किसी ऐसे इंसान का भी इस्तेमाल कर सकता है जिससे किसी को कोई उम्मीद ही ना हो?
बिल्कुल कर सकता है। और यहीं पर इस कहानी में वो सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। यशाया 45 में ईश्वर साइरस नाम के एक राजा को अपना मसीहा या अभिषिक्त कहता है।
साइरस? लेकिन वो तो एक मूर्ति पूजक राजा था ना?
हाँ, और यही तो बात है, उस समय के लोगों के लिए ये किसी वैचारिक भूकंप से कम नहीं था। साइरस कोई यहूदी नहीं था, वो एक अजनबी, एक विदेशी राजा था जिसने बेबीलोन को जीता था।
मतलब लोग तो यही सोच रहे होंगे ना कि कोई नया इब्रानी बच्चा पैदा होगा, जैसे मूसा को टोकरी में बहाया गया था वैसा ही कुछ होगा। उन्हें एक जाना पहचाना, उनके अपने सांचे में फिट होने वाला हीरो चाहिए था।
एकदम, और एक अनजान राजा के जरिए उद्धार की बात सुनना उनके लिए ऐसा था जैसे मिट्टी कुम्हार से पूछ रही हो कि तुम ये क्या बना रहे हो, क्या तुम्हें अपना काम करना नहीं आता।
ये एनालॉजी बहुत जबरदस्त है। इंसान हमेशा चाहता है कि ईश्वर उसके बनाए हुए लॉजिक के हिसाब से काम करे।
लेकिन जब सत्ता पूरी तरह निर्माता के हाथ में है तो वो संप्रभु है। वो किसी भी साधन का उपयोग कर सकता है, चाहे वो लोगों की उम्मीदों के बिल्कुल उलट ही क्यों ना हो।
तो इसका असल मतलब क्या है? अगर ईश्वर सब कुछ कंट्रोल कर रहा है तो यशाया 45 की उस सातवीं आयत का क्या?
कौन सी आयत?
वो जहां ईश्वर कहता है, मैं प्रकाश बनाता हूं और अंधकार रचता हूं, मैं शांति बनाता हूं और विपत्ति रचता हूं। अगर वो सब कुछ कर रहा है तो क्या बुराई भी वही पैदा कर रहा है? ये तो बहुत अजीब लगता है।
यहां पर सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये पाठ प्राचीन काल के द्वैतवाद या ड्यूअलिज्म का खंडन कर रहा है।
ड्यूअलिज्म मतलब जैसे वो यिन और यांग वाला कॉन्सेप्ट?
बिल्कुल वही। यिन और यांग मानता है कि अच्छाई और बुराई दो बराबर की स्वतंत्र ताकतें हैं जो आपस में लड़ रही हैं। लोग सोचते थे कि चलो कम से कम ईश्वर बुराई के लिए जिम्मेदार तो नहीं है।
लेकिन ऑज़वाल्ड कहते हैं कि पाठ इस विचार को नहीं मानता, है ना?
एकदम नहीं मानता। पाठ के अनुसार ब्रह्मांड में केवल एक ही शक्ति है, बुराई कोई स्वतंत्र ताकत नहीं है। दार्शनिक रूप से देखें तो बुराई सिर्फ अच्छाई की अनुपस्थिति है, जैसे अंधेरा सिर्फ रोशनी की अनुपस्थिति होता है।
अच्छा, तो विपत्ति रचने का क्या मतलब हुआ फिर?
उसका मतलब यह है कि ईश्वर वो प्राथमिक कारण है जिसने एक ऐसी स्वतंत्र दुनिया बनाई जहां लोगों के पास चुनने की आजादी है, और उस आजादी के नतीजे में बुराई पैदा हो सकती है, लेकिन कंट्रोल उसी एक सत्ता का है।
ये बहुत ही भारी विचार है, लेकिन अगर वो ईश्वर इतना अकल्पनीय है, इतने रहस्यमयी तरीके से काम करता है, तो क्या इंसान के लिए उसे समझना सच में असंभव है?
देखिए, ऑज़वाल्ड कहते हैं कि ईश्वर ने कभी छुपकर बात नहीं की, उसने खुले तौर पर बताया है कि वो क्या कर रहा है। असल समस्या ये है कि इंसान उस सत्य को सुनना ही नहीं चाहता।
हाँ, हम तो उन चीजों को पूछना पसंद करते हैं जो हमें समझ ही नहीं आती। और मुझे यहाँ वो सीएस कैटलॉग वाली कहानी याद आ रही है जो ऑज़वाल्ड ने बताई थी।
अरे हाँ, वो कहानी तो बहुत ही व्यंग्यात्मक है,
है ना? वो एक परिवार होता है जो पादरी के सामने खुद को बहुत धार्मिक दिखाना चाहता है। तो माँ अपने बच्चे से कहती है, बेटा जा और वो बड़ी किताब लेकर आ जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। उसे लगा बच्चा भारी भरकम बाइबल लाएगा।
और बच्चा क्या लाता है? सीयर्स कंपनी का शॉपिंग कैटलॉग।
बिल्कुल, ये कहानी दिखाती है कि हम अक्सर धर्म ग्रंथों को घर में सजा कर तो रखते हैं, रेशमी कपड़े में लपेटते हैं, लेकिन उन्हें खुलकर पढ़ते नहीं है। हम बस मान लेते हैं कि सब बहुत रहस्यमयी है,
जबकि निर्माता साफ कह रहा है कि मैंने अपना उद्देश्य बता दिया है, बस तुम्हें सुनना है। और यहीं से हम इस चर्चा के चरम बिंदु पर आते हैं, यशाया 46 का वो रूपक,
वो बेबीलोन के देवताओं वाला।
हाँ, बैल और नींबू की मूर्तियां। जरा तस्वीर देखिए, उन सोने चांदी की मूर्तियों को थके हुए हाफते जानवरों पर लाद कर ले जाया जा रहा है।
बाप रे, मतलब वो मूर्तियां खुद अपने पुजारियों के लिए एक भारी बोझ बन गई हैं।
बिल्कुल। और दूसरी तरफ ईश्वर अपने लोगों से क्या कहता है? वो कहता है, तुमने मुझे नहीं बनाया, मैंने तुम्हें बनाया है, गर्भ से लेकर बुढ़ापे तक मैं तुम्हें उठाऊंगा।
वाओ, ये तुलना तो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। एक तरफ इंसान अपने बनाए देवताओं को अपनी पीठ पर लादकर पसीने से तरवतर हो रहा है, और दूसरी तरफ वो निर्माता है जो कहता है, तुम्हें मुझे ढोने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें ढोऊंगा।
हाँ, और पूरी बहस इसी सवाल पर सिमट जाती है कि हम अपने सिस्टम को ढो रहे हैं या हमारा बनाने वाला हमें ढो रहा है।
इसे सुनकर मुझे महान विचारक डिट्रिच बॉनहॉफर का एक कोट याद आ गया। उन्होंने कहा था कि आप वास्तव में केवल उसी चीज के मालिक हो सकते हैं जिसके बिना आप खुद को बेहतर स्थिति में देख सकें।
ये बहुत गहरी बात है,
है ना? मतलब अगर कोई चीज ऐसी है जिसके बिना आप जी नहीं सकते, तो असल में आप उसके मालिक नहीं हैं। वो चीज आपकी मालिक बन चुकी है। हम अपने बनाए सिस्टम को ढोते ढोते खत्म हो जाते हैं।
और इंसान की इस थकान का एकमात्र समाधान कृपा या अनुग्रह में है, जो पूरी तरह से ईश्वर की पहल है। ऑज़वाल्ड इसे उड़ाऊ पुत्र या प्रोडिगल सन की कहानी से बहुत अच्छे से समझाते हैं।
वो कहानी जहां बेटा अपना हिस्सा लेकर दूर चला जाता है और सब कुछ उड़ा देता है।
हाँ, और अंत में स्वरों के बाड़े में भूखा मरता है। पारंपरिक रूप से हम सोचते हैं कि बेटा लौटा और पिता ने माफ कर दिया, लेकिन ऑज़वाल्ड कहते हैं कि अगर ये पूरी तरह अनुग्रह होता तो पिता घर पर इंतजार नहीं करता।
तो वो क्या करता?
वो खुद उस सुअरों के बाड़े के गंदगी में जाता और अपने बेटे को वहां से उठाकर लाता। ये है असली निर्माता की तस्वीर, जो खुद पहल करता है।
ये सच में सोचने का एक बिल्कुल ताजा नजरिया है। और देखिए, हमने शुरुआत एक्सरे मशीन से की थी, जो टूटी हड्डी तो दिखा सकती है लेकिन हमारी अंदरूनी थकान नहीं।
बिल्कुल सही।
तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, प्राचीन काल में लोग लकड़ी और सोने की मूर्तियों का बोझ ढोते थे। आज की इस भागदौड़ मेरी जिंदगी में ऐसी कौन सी अदृश्य मूर्तियां हैं जिन्हें हम ढो रहे हैं?
ये बहुत सोचने वाली बात है।
क्या वो हमारा करियर है, या डिजिटल दुनिया में बनाए गए हमारे नकली अवतार, या सफलता की कोई झूठी परिभाषा जिसे हम आंख मूंद कर ढो रहे हैं और खुद को थका रहे हैं?
हाँ, बजाय इसके कि हम खुद को एक बड़े और सच्चे उद्देश्य के हाथों में सौंप दें जो असल में हमें ढोने के लिए तैयार है।
बिल्कुल, और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कुछ सोचने के लिए जरूर मिला है आज।